ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता और सरकार के प्रयासों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल रोग एक अनुवांशिक स्थिति भारत में आदिवासी आबादी के बीच व्यापक है, जहां शेड्यूल ट्राइब के बीच 86 जन्मों में से एक इस रोग से पीड़ित होता है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। सिकल सेल रोग के बारे में जानकारी फैलाने और इसका लोगों पे और परिवारों पे क्या प्रभाव होता है, इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है। इस साल वर्ल्ड सिकल सेल डे की थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। भारत सरकार काफी कार्यक्रम चला रही है, काफी अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है, ताकि लोगों को सिकल सेल रोग के बारे में जानकारी दी जा सके। 19 जून यानी आज से 3 जुलाई तक जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुअल ओराम जी ने लोगों से आग्रह किया है कि इस कैंपेन में भाग लें, ताकि इस रोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके।
आप लोग को जानकारी है कि 0 से 40 वर्ष का आयु वाले जनजाति बहुल इलाका में 7 करोड़ से ज्यादा लोग सिकल सेल में पीड़ित हैं। ये 17 राज्यों में व्याप्त है। इसको उन्मूलन करने के लिए, इसको इराडिकेट करने के लिए भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। आप लोगों से मेरा आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी पाने के लिए कर्मशाला में, अवेयरनेस कैंपेन में आप लोग भाग लें और वहां जाएं। जो इसका टेस्टिंग होगा, परीक्षण होगा, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा भाग लें।
इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार
आराधना जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिकल सेल रोग होता क्या है।
सिकल सेल डिजीज ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड सेल में होता है, और जिसके कारण जो इससे पीड़ित होते हैं उन्हें बहुत दर्द होता है, और ये जेनेटिक होने के कारण ये पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकती है अगर इसमें हम इसका रोकथाम ना करें तो। दूसरा, ये ट्राइबल एरियाज में प्रीडोमिनेटली, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अभी इधर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो नॉन ट्राइबल एरियाज में भी कुछ जगहों में पाया जाता है। सिकल सेल ये चूंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका रोकथाम किया जा सकता है और ये आगे जेनरेशन इससे मुक्त हो, इसके लिए एक नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पिछले वर्ष 1 जुलाई को शहडोल मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, हमारे द्वारा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग किया जाता है। ये जो जितने भी हमारे 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं पूरे देश में, वहां स्क्रीनिंग होता है सभी ट्राइबल एरियाज, जो 17 स्टेट्स हमारे हैं, 343 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग के साथ साथ जब स्क्रीनिंग होता है उनका काउंसलिंग और अवेयरनेस करते हैं, और प्री मैरिटल बेसिकली काउंसलिंग किया जाता है, और उसके बाद जो पॉजिटिव निकले, सिकल सेल डिजीज निकले और उसमें एक कैरियर भी होते हैं, तो जो सिकल सेल डिजीज निकलते हैं उनके लिए फिर हम लोग डिजीज मैनेजमेंट करते हैं, तो बेसिकली हाइड्रोक्सी यूरिया उनको दिया जाता है। तो स्क्रीनिंग के साथ साथ हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयार किया गया है उसमें इस प्रकार का किया गया है कि कॉम्बिनेशन मेल और फीमेल, एक पुरुष और एक महिला, एक अगर सामान्य है और एक डिजीज्ड है, तो वो दोनों शादी करेंगे तो बच्चे में कितना पॉसिबिलिटी है डिजीज्ड होने का, उसी तरह कैरियर के साथ अगर शादी करें तो कितना पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह के सारे परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस करके हम कार्ड देते हैं जब टेस्ट हो जाता है, और वो टेस्टिंग भी हमारा पीओसी किट के द्वारा या सॉलिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से होता है। टेस्ट जब होने के बाद फिर कंफर्मेशन, अगर पॉजिटिव निकला तो कंफर्मेशन के लिए हम एचपीएलसी जो अस्पतालों में उपलब्ध है मशीन, उसमें टेस्ट उसको कंफर्म कराया जाता है। एक बार कंफर्म हो जाता है तो हाइड्रोक्सी यूरिया मैनेजमेंट, बेसिकली हम उनको दवा उसका उपलब्ध कराते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें फोकस है अवेयरनेस पर।
डॉक्टर नवल जी, जैसा कि आराधना मैडम ने बताया सिकल सेल रोग क्या है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिकल सेल रोग के लक्षण क्या होते हैं।
सिकल सेल डिजीज में जो हीमोग्लोबिन है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, वो स्फेरिकल होता है और काफी स्मूथ होता है वो, ताकि वो नॉर्मल जो कैपिलरीज हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से उससे निकल जाता है। सिकल सेल डिजीज में जो हीमोग्लोबिन है, जेनेटिक डिफेक्ट के कारण से ये सी शेप्ड, सिकल शेल शेप्ड, क्रीसेंट शेप्ड हो जाता है। तो जब ये छोटी छोटी कैपिलरीज में जब ये जाता है तो वहां पे ये ब्लॉकेट कर देता है, इसमें पेन्स होते हैं। मान लीजिए घुटने में गया तो वहां पे पेन होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेन क्राइसिस का होता है, जिसको पेन एपिसोड्स भी कहते हैं। और स्प्लीन चूंकि हमारा ऐसा बॉडी का अंग है जहां पे जो ये ब्लड सेल्स हैं तो वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, तो स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, स्प्लीन बड़ी हो जाती है, लिवर में इश्यूज हो जाते हैं, मेनली ज्वाइंट्स में होते हैं। और फिर ये जो बच्चे हैं, चूंकि इसमें मेन एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो लाइफ है वो 120 दिन होती है, इसमें 10 से 20 दिन हीमोग्लोबिन की लाइफ है, तो इससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कम होने के कारण इनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। बहुत जल्दी एज में जो बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, और 5 से 10% बच्चों की जो डेथ है तो वो 5 साल से छोटी उम्र में हो जाती है। और जनरली ऐसा पाया गया है कि इनकी जो आयु है, जैसे अगर नॉर्मल आयु 80 वर्ष है या 70 ईयर्स है, तो 15 से 20 साल इनकी आयु कम होती है। बट जैसा रानना बता रही थी कि अगर आप समय से हाइड्रोक्सी यूरिया लें, न्यूमोकोकल इंजेक्शन जो कि एक अभी इसको भी कंपलसरी कर दिया है ऐसे बच्चों में, अगर वो हम इंजेक्शन लगाएं तो जो चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हाइड्रोक्सी यूरिया बहुत ही सस्ती दवाई है, जिसके पूरे साल का ट्रीटमेंट 1000 रूपये, ये फ्रीली अवेलेबल है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको एसेंशियल ड्रग लिस्ट में भी डाल दिया और हर पीएचसी सीएचसी सब सेंटर पे अवेलेबल है, बट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेना होता है। अगर हम छोटी उम्र में जैसे ही ये डायग्नोज हो जाता है बच्चे का, तो हम अगर इसको हाइड्रोक्सी यूरिया को जल्दी लेना शुरू कर दें, तो फिर ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल लाइफ के 75 से 80 साल तक की भी नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं। बट एक और बड़ी चीज जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ट्राइबल अफेयर ने और डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी ने किया कि सिकल सेल डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनको एक परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। उनको प्रेफरेंस दी जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और बाकी जगह पे जो जो डिसेबिलिटीज के बेनिफिट्स हैं, और आयुष्मान में भी इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं।
सरकारी आंकड़े बताते हैं, और जैसा कि आराधना मैडम ने भी कहा, 17 राज्यों के कई जनजातीय जिले या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स सिकल सेल से पीड़ित हैं। इनकी संख्या ट्राइबल पॉपुलेशन में ज्यादा है। डॉक्टर नवल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सिकल सेल रोग ज्यादातर जनजातीय लोगों में ही क्यों पाया जाता है?
जैसा मैंने पहले बताया कि जो सिकल सेल की बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी है, और इसमें सदियों से जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि जो ये जेनेटिक म्यूटेशन है ये उन एरियाज में हुआ जहां पे मलेरिया ज्यादा प्रेवलेंट था। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम गुजरात से लेके उड़ीसा तक और मध्य प्रदेश से नीचे तमिलनाडु तक अगर एक लाइन खींचे तो टी शेप लाइन आएगी। तो यही एरियाज जो हैं ये ज्यादा मलेरिया इन्फेस्टेड एरिया हैं। मलेरिया से बचने के लिए नेचर ने एक जेनेटिक म्यूटेशन किया। और अगर आप अफ्रीका में भी जाएं जहां पे ये बीमारी ज्यादा कॉमन है, तो वहां पे भी मलेरिया बहुत ज्यादा है। तो इन म्यूटेशंस के कारण से तो जो ये सिकल सेल मिशन है वो भी ये 17 स्टेट्स में, जैसे गुजरात से हम शुरू करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में, असम में कुछ कुछ जगह पे पाया गया है। इसी तरह से जो तमिलनाडु है वहां पे नीलगिरी हिल्स में ये पाया गया है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे नहीं है। अब चूंकि पहले क्या था, ट्राइबल जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ जंगलों में रहती थी, लोकलाइज थी, विद इन जो शादी है वो आपस ट्राइबल कम्युनिटीज में ही हुआ करती थी, उसके कारण से ये एक जीन दूसरे फैमिली में आगे बढ़ती जाती थी। बट अब क्या, जैसे जैसे ट्राइबल्स माइग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो जॉब्स के कारण है, जैसे हम लोग एजुकेशन में लगभग 40 लाख बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप देते हैं, फॉरेन भी जा रहे हैं, और शादियां भी अभी उतनी रिजिडली अपने उसमें नहीं होती, तो इसके कारण से जो ट्रेट है वो बाकी लोगों में भी, जैसा अनुराधा जी बता रही थी कि दूसरी कम्युनिटीज में भी इसको देखा जाए। तो मेनली जो ये है 17 स्टेट्स हैं और लगभग 350 के करीब जिले हैं जहां पे ये सिकल सेल प्रेवलेंट है।
आराधना जी, जैसा कि डॉक्टर नवलजीत जी ने बताया कि सिकल सेल रोग ट्राइबल पॉपुलेशन में क्यों पाया जाता है, उन्होंने अफ्रीका की भी बात करी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि भारत इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफी कार्यरत है और 2047 जो हमने अपना टारगेट रखा है तब तक इस बीमारी को उखाड़ फेंकने की हमने ठानी है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि और देशों के साथ क्या हम उनसे कोलैबोरेट करके उनकी टेक्निक अपने देश में ला रहे हैं ताकि हम सिकल सेल जैसी बीमारी से लड़ सकें?
इसमें देखा जाए तो मुझे लगता है भारत एकमात्र देश है जहां पर ये सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन लॉन्च हुआ है। अन्य देशों में भी लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन चूंकि भारत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो पिछले वित्तीय वर्ष में ये लॉन्च किया गया, इसमें 2047 का टारगेट रखा गया है एलिमिनेशन का, तो बाकी कंट्रीज में भी कई एक जीन थेरेपी करके आया है जिस पर कुछ जगह ही लोग कार्य कर रहे हैं, यूएस, यूके, यहां। बट यहां भी, हमारे यहां भी आईसीएमआर काफी रिसर्चेस कर रहा है, इस पर कार्य हो रहे हैं कि नए नए और कुछ उसके अगर वैक्सीन्स या कुछ और कोई थेरेपी वगैरह आ सके जिससे कि हम इससे निजात पा सके। लेकिन जो मुख्य फोकस, जो डिफरेंस जो मुझे लगता है, जो भारत सरकार के द्वारा अपने देश में वो जो यूनिक माना जाता है, वो है हम ज्यादा फोकस ये अगले जीन तक जाए नहीं। बाकी सभी देश जनरली मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं, डिजीज मैनेजमेंट पर। हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं अर्ली डिटेक्शन, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, जो मुझे लगता है पूरे विश्व में, इंडिया में ही हो रहा है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, दूसरा अर्ली डिटेक्शन, तीसरा प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि हम नेक्स्ट जनरेशन को इसको जाने ही ना दे। तो वो जो अवेयरनेस पर मेन फोकस हो रहा है, अभी तक हम लोगों ने जो 3 साल का टारगेट रखा है, लगभग 7.5 करोड़ का आंकड़ा है, तो उसमें से हम लोगों ने लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का स्क्रीनिंग, 3.37 करोड़ एग्जैक्ट अगर फिगर बताए, 2 दिन पहले का फिगर है ये। प्रतिदिन हमारा एक डैशबोर्ड, एक पोर्टल है जिसमें प्रतिदिन जो स्क्रीनिंग होती है, लाइन लिस्टिंग, बेनिफिशियरी के नाम सहित पूरा डिटेल्स आता है कि वो नेगेटिव निकला कि पॉजिटिव निकला कि कैरियर निकला। तो ये जो 3.25 करोड़ का हम लोगों ने कर लिया है स्क्रीनिंग, उसमें से मुश्किल से 1,30,000 करीब अभी तक पॉजिटिव आए हैं। तो उनका फिर जब कंफर्मेशन किया तो 77,000, उसके बाद उनका जब हम लोगों ने एचपीएलसी टेस्ट किया तो उसमें लगभग 77,000 अभी तक हमारे आए हैं जो पॉजिटिव है। उसमें लगभग 70,000 लोग हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहे हैं, तो बाकी जो है अभी जस्ट रिसेंट आया है, तो वो उन सबका भी मेडिकेशन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो ये सभी चीजें भारत के लिए यूनिक है, तो इसी कारण से जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि हम एलिमिनेट करेंगे, हम उस दिशा पर मेनली बढ़ रहे हैं।
आराधना जी, जैसा आपने बताया, ये तो बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एलिमिनेशन पे अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। आपकी इस बात को सुनके मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हमारे पास और भी काफी बीमारियां हैं जिन पे आपका मंत्रालय जोर शोर से लगा हुआ है, पर सिकल सेल जैसी बीमारी पे इतना ज्यादा और वो भी प्रधानमंत्री का फोकस क्यों है?
वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी है बीमारियां जिससे हम लड़ रहे हैं, मलेरिया, टीबी, डेंगू, चिकनगुनिया, वो सबसे लड़ रहे हैं, लेकिन ये डिजीज पर फोकस इसलिए है क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है एंड इट इज प्रिवेंटेबल। वैसे और भी कई डिजीज हैं जो प्रिवेंटेबल है, बट ये ट्राइबल एरियाज में मेजर एक प्रॉब्लम उभर के आया है। और अभी जो देखा जा रहा है कि ये नॉन ट्राइबल एरियाज में भी स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि लोग अब पहले जो गांव में, जिस जंगल में ट्राइबल रहते थे, बात करते थे, बाहर से लोगों से उनका इंटरेक्शन नहीं होता था, अब वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, शादियां भी अभी अलग जगह जाकर वहां कर रहे हैं। तो अब ये फैल रहा है, अगर हम समय पर नहीं जानकारी लें कि इनको सिकल सेल है, एनीमिया हुआ है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को वो स्प्रेड कर सकते। इसी कारण से फोकस सिकल सेल पर अभी हमारा है कि हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर इसमें जागरूकता अभियान चलाएं।
डॉक्टर नवलजीत जी, जैसा कि आराधना जी ने बताया कि पिछले साल प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई को मध्य प्रदेश शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत की थी। काफी सारी मिडवाइफ्स को, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को, केयर गिवर्स को, काफी लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश की गई है। आपके विचार में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स के अलावा बाकी टीचर्स, पेरेंट्स कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफी ट्राइबल लोगों को ये पता भी नहीं होता कि ये बीमारी एग्जिस्ट भी करती है और उन्हें भी है, तो इसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी?
माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने सिकल सेल की टेस्टिंग जो थी वो कंपल्सरी सारी टेस्टिंग करानी शुरू की। तो जैसा राधना जी बता रही थी कि इसमें 2 लेवल पे ट्रीटमेंट, इनफैक्ट 3 लेवल पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। पहला तो जो सिकल सेल डिजीज्ड है उनको जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया देनी है, उनको न्यूमोनाइटिस के लिए जो वैक्सीन है वो लगवानी है, उसके बाद उनकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके लिए जो ट्रीटमेंट है जो कि आयुष्मान भारत में भी है और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी भी प्राइमरी सेंटर पे है। दूसरा जो लेवल है जो कि अवेयरनेस वाला लेवल है, उसमें सबसे बड़ा रोल इन सबका सिर्फ डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं, जो ANMs हैं, मिडवाइफ्स हैं, कि जब भी प्रेग्नेंट मदर टेस्टिंग के लिए आ रही है तो उसको कंपलसरी किया जा रहा है कि उसकी टेस्ट में सिकल सेल की टेस्टिंग भी हो, क्योंकि 12 वीक्स के बाद पता चल जाता है कि अगर मदर जो प्रेगनेंसी है वो जो बच्चा है तो वो क्या सिकल सेल कैरियर या सिकल सेल डिजीज्ड है। तो इसमें एक एडवांस टेस्ट अवेलेबल है CVA, कोरियोनिक विल्लस एंजियोग्राफी, तो वो टेस्ट के थ्रू एक सैंपल लेके, और ये अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी एम्स में, सभी मेडिकल कॉलेजेस में ये CVA जो टेस्टिंग है ये की जाए, तो उसमें अगर 12 वीक्स में पता चल गया कि मदर कैरियर है तो इमीडिएटली हस्बैंड का टेस्ट होगा कि हस्बैंड भी कैरियर है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो 25% चांसेस हैं कि जो बच्चा है वो डिजीज्ड होगा, 50% चांसेस हैं कि बच्चा कैरियर होगा। तो इसके लिए जब तक जो ANM है या जो काउंसलर्स हैं मदर्स को नहीं बताएंगे कि हस्बैंड की भी टेस्टिंग होनी है, उसके बाद ये एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो गुजरात ने जो न्यूबॉर्न्स, हम एक तो ये है कि जो डिजीज पैदा होते जाएं और उनका ट्रीटमेंट करते जाएं, बट जैसे 2047 तक इलिमिनेशन की बात है, उसमें एलिमिनेशन में ये बहुत जरूरी है कि न्यू बॉर्न विथ सिकल सेल डिजीज को रोका जाए। और आप देखेंगे ट्राइबल एरियाज में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी पहले बहुत कम होती थी, अब तो नॉर्मल से भी अच्छे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। तो फिर जैसे गुजरात ने किया सबकी टेस्टिंग कंपलसरी की, हर जो मैरिजेबल गर्ल है उसको पता है कि मैं सिकल सेल कैरियर हूं तो वो शादी सिकल सेल कैरियर से ना करे, इसी तरह से मेल को पता है कि मैं कैरियर हूं तो मेरा जो पार्टनर है वो सिकल सेल ना हो, और अगर है भी दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हमें शादी करनी है तो 25% चांसेज है सिकल सेल डिजीज बच्चा होने के, तो उस समय वो जरूर टेस्टिंग कराएं। तो हमारा जो संदेश है आज का, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो कहते हैं कि जब तक हम जागरूक नहीं बनाएंगे, और जागरूक में टीचर्स का भी रोल है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी रोल है, प्रेगनेंसी के लिए जो दाई हैं, जो ट्राइबल हीलर्स हैं उनका भी रोल है, इसी तरह से टीचर्स का, स्कूल में डॉक्टर्स का, तो इन सबका रोल है। एक और चीज जो अनुराधा जी ने बताया और आपने उसमें सवाल भी पूछा था कि वर्ल्ड की जो बेस्ट चीजें हैं, तो एक तो कुछ यूनिक चीजें जो इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह से जो जीन एडिटिंग की अनुराधा जी बात कर रही थी जिसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये जापान में टेस्ट हुआ था और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसमें जीन को एडिट किया जा सकता है। तो मंत्रालय ने और ICMR ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसमें 3 साल का एक प्रोजेक्ट दिया जिसका फर्स्ट लेवल की जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। दूसरा इसमें एक हमने योगा बेस्ड लाइवलीहुड करके एक बैंगलोर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है एस व्यासा, तो उनके साथ नंदूरबार में 75 बच्चों पे योगा का 8-9 महीने उनको पूरा योगा कराया, तो उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स भी कम नहीं हुए, उनको पेन क्राइसिस नहीं हुआ, उनको ड्रग्स की कम जरूरत पड़ी, और जो उनके ब्लड मार्कर्स थे उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं, इसी तरह से जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने भी इस तरह की सिकल पे काफी चीजें की हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे प्वाइंट ऑफ केयर टेस्ट के कम से कम नहीं तो 6-7-8 तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, जो कि पहले क्या होता था कि उसको जो पेशेंट या जो सस्पेक्टेड है उसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट से होता था, फिर HPLC होता था, 3 दिन खराब हो जाते थे, अभी क्या है आधे घंटे में उसका टेस्ट मिल जाता है। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने पोर्टल बनाया है वो भी एक वर्ल्ड में एक यूनिक टाइप का पोर्टल है, जिसमें आप डेली बेसिस पे हर पेशेंट का जो डेटा है वो आप अपडेट कर रहे हो, हमें पता है कौन कैरियर है, कौन डिजीज्ड है, कौन किस गांव से, हर एक विलेज तक का डेटा है। तो उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें लोगों को अवेयरनेस करा रही हैं या काउंसलिंग करा रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी, NGOs हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो बना के किया जा रहा है। तो जो इंडिया एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जहां पे इस टाइप का मिशन लेवल का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि इसको आने वाले समय में जड़ से खत्म किया जा सके।
ये फिर से एक बहुत गर्व की बात है कि योगा से भी इस बीमारी के रोकथाम में काफी काफी मदद मिलेगी। और जितने हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर वो इस रोग से पीड़ित हैं तो योग का भी सहारा आप ले सकते हैं ताकि आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें, अपने घर वालों को बचा सकें, या आपकी जानकारी में कोई है तो उस तक ये बात पहुंचा सकें। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी के आंकड़ों के हिसाब से देश का सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा इलाका या स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा सिकल सेल से प्रभावित रोगी मौजूद है?
नंबर्स में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो सेंट्रल बेल्ट हम लोग उसको कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इधर से झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और थोड़ा उधर जाएं गुजरात, तो ये पूरा ही बेल्ट है जिसमें ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में काफी बड़ी संख्या में, बट सबसे बड़ी संख्या अभी छत्तीसगढ़ में है नंबर्स में, और महाराष्ट्र फिर नेक्स्ट है।
छत्तीसगढ़ राज्य में सिकल सेल उन्मूलन के प्रयासों के बारे में अपना अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा, कुलपति मेडिकल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, बताते हैं कि
हर जगह में ये अवेयरनेस है। पहले मैं जाता था तो सिकल सेल जो है स्क्रीनिंग करने का हमको भगा देते थे, अब ये अवेयरनेस आ गया, खुद हमको वो बुलाते हैं क्योंकि वो फायदा देखे। जो लोग अपने बीमारी को छुपाते थे वो धीरे धीरे वो खुद आके हमारा साथ टेस्ट करा के इलाज कराए, क्योंकि अवेयरनेस जो हम लोग पर्सनल टू पर्सन जाके इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट किए, स्क्रीनिंग किए, इसका फायदा हुआ।
अभी हमने सुना कैसे डॉक्टर पात्रा ने अपने अनुभव साझा किए, अवेयरनेस से कितनी चीजें बदल सकती हैं। आराधना मैडम, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि काफी हमारे शरीर के अंग हैं जो इस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए क्या आप थोड़ा प्रकाश डाल सकती हैं कि कौन से अंग हैं जो प्रभावित होते हैं अगर ये बीमारी से कोई पीड़ित है तो?
क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है तो ब्लड सेल्स हमारे आरबीसी तो पूरे बॉडी में है, तो ऐसे देखा जाए तो पूरा ही बॉडी हम कह सकते हैं प्रभावित होगा। पूरे बॉडी में पेन होता है, तो किसी के घुटने में पेन होता है, किसी के हाथ में पेन होता है, कई ऐसे हैं जिनका पूरा ही शरीर जैसे अकड़ जाता है। जैसे नवलजीत जी ने ऑलरेडी बताया, वो जो क्रिसेंट शेप है, हसिया उसको हम बोलते हैं, उस शेप का वो हो जाता है जिसके कारण वो जुड़ जाता है, तो जुड़ने से वो क्लॉग जब हो जाता है उसके कारण, एक जगह लिटरली एक क्लॉट टाइप का होने के कारण वो जो इजी ब्लड फ्लो हम लोग के नॉर्मल ह्यूमन बींग में होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसके कारण पेन होता है। तो वो अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन एज और कितना उनका वो ये है, तो पूरे बॉडी में पेन हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो सकता है। तो वैसे पूरा देखा जाए तो इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन अगर आप समय पर उसका डिटेक्शन कर लें और दवाई ले तो काफी नॉर्मल लाइफ आप लीड कर सकते हैं।
डॉक्टर नवलजीत जी, आपसे मैं एक चीज ये जानना चाहूंगी कि जो नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन है उसके अंतर्गत काफी ग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि लगे हुए हैं इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और आज से नहीं काफी सालों से लगे हैं, क्योंकि आप इस मंत्रालय में कार्यरत हैं और काफी समय से इसे देख रहे हैं, कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी अगर आप हमारे श्रोताओं को बता पाए।
इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें कि मैंने ऐसा भी देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, बट उनके बच्चे भी सिकल सेल डिजीज हुए, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी कि ये हमें भी ये डिजीज हो सकती है। बट जब से ये पिछले 10 साल से, और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकल सेल पे खास ध्यान देना शुरू किया, जैसे गुजरात था, फिर मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, इन सारी स्टेट्स में जब ये बहुत अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू हुए, टेस्टिंग के प्रोग्राम शुरू हुए, तो इससे जुड़ा टैबू था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। सबको पता है कि ये डिजीज ऐसी नहीं है कि जो छूतछात वाली डिजीज है, इसको रोका जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मेरे को क्या करना है, मेरे को जन्म पत्री नहीं मिलानी है, मेरे को अपनी जेनेटिक कुंडली मिलानी है, और ये इतना सिंपल टेस्ट है जो कि अभी सब जगह पे अवेलेबल है। तो जो अगर हम देखें तो इसमें पीएससी और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक टर्शरी केयर भी अवेलेबल है। तो भारत में कितने सारे सेंटर्स हैं जहां पे ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी है, और जो आयुष्मान कार्ड जो होल्डर हैं, धारक हैं, ट्राइबल्स के लिए तो आयुष्मान कार्ड सबको मिलता ही है, तो उसमें जहां पे एक सही समय में पकड़ा जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तक भी इसमें सक्सेसफुल हुई है और हो जा रही है। इसमें पानी खूब पीते रहना पड़ता है, उस तरह से आपको जो रेगुलर एक्सरसाइज जैसे योगा है वो करने की जरूरत है। फिर आपकी जो डाइट है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसी हो जो कि इजीली डाइजेस्टिबल हो। तो इन सब चीजों का जो ध्यान है वो हमारे जो वर्कर्स हैं वो समझाते हैं। इसी तरह से एक नेस्को करके, नेशनल सोसाइटी फॉर सिकल सेल, तो उनके एनजीओज हर स्टेट में हैं और उनके नेशनल लेवल पे भी एनजीओज हैं। अगर आप उनकी साइट पे जाएं या उनके वीडियोज देखें तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं।
ये एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है जिसके बारे में आपने हमें बताया, क्योंकि जनजातीय लोग अपना कार्ड मिला के शादी कर रहे हैं, तो ये एक सच में गर्व करने वाली बात है, क्योंकि शहरों में भी शायद ऐसा नहीं होता।
मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन के प्रयासों के बारे में आकाशवाणी से बातचीत में राज्य नोडल अधिकारी राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन NHM मध्य प्रदेश की डॉक्टर रूबी खान ने बताया कि
अवेयरनेस के लिए अभी मध्य प्रदेश में काफी हमने काम किया है। हमने विशेषतर जो जेनेटिक, विशेष प्रकार के जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड डेवलप किए हैं जिसमें एक काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती। मरीज खुद उस कार्ड से जैसे कुंडली मिलाते हैं उस तरह वो कार्ड को ओवरलैप करके उसको ये पता चल सकता है कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा हमने जो भी मरीज जो चिन्हित हो चुके हैं या जिनको हमने डायग्नोस कर लिए हैं उनका कंसल्टेशन की, उनको पहले पता नहीं था, अब सरकार ने उनको ढूंढा है तो उनको प्रॉपर केयर मिल सके, उनको हाइड्रोक्सी यूरिया मिल सके, उनका कंप्लायंस उस ड्रग से बना रहे, इसलिए हम लगातार कैंप करते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाते हैं ताकि वो लगातार वो दवाएं खाते रहें। उनको जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है तो उनको ये पता हो कि किन कंडीशंस में उनको हॉस्पिटल जाना है या उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है।
अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर रूबी जो हमें मध्य प्रदेश के बारे में बता रही थी। आराधना मैडम, आपसे मैं एक सवाल ये जानना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग का टाइम 0 से 40 वर्ष तक रखा गया है और पहले कुछ सिम्टम 6 महीने के बच्चों में भी दिख जाते हैं। 6 महीने का बच्चा नवजात बच्चा है, बहुत छोटा है, वो कुछ बता नहीं सकता, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसके माता पिता कैसे जान सकते हैं ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित है या कुछ उससे भी परेशानियां हो रही हैं?
ये जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे POC किट्स अवेलेबल है, जो पहले ट्रेडिशनल मेथड होता था सॉल्युबिलिटी टेस्ट का, जो बीकर में वो खून का ये डाल के उसको करके निकालते थे, देन कन्फर्मेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट भेजते थे HPLC करने के लिए। अब हमारे लगभग 7-8 प्रकार के POC किट्स अवेलेबल है। वो एक छोटा सा स्ट्रिप है जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है, उसी टाइप का एक छोटा सा है, उसमें वो ब्लड ड्रॉप डालने पर वो उसमें लाइन्स आते हैं, उसका वेरिएशन बता देता है कि ये डिजीज्ड है तो इतने होंगे, ये कैरियर होगा तो इतना होगा, ये है तो इतना होगा। तो वही टेस्ट हम लोग जैसे इन ट्राइबल एरियाज में जो प्रेग्नेंट वुमेन अपना टेस्ट कराने जाते हैं उनका करवाते हैं, उसी तरह नवजात बच्चे का अगर ट्राइबल एरिया में जन्म हुआ तो उसका करवाते हैं। तो वो जानकर वो जान सकती हैं कि अगर मैंने वो चाहेंगी तो टेस्ट अपना कराकर, बिकॉज ये फैसिलिटी हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो लिटरली गांव स्तर पर हम कह सकते हैं पंचायत लेवल पर है, तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ केयर हमारा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है गांव वालों के लिए, गांव का अस्पताल माना जाता है उसको, तो वहां पर ये टेस्ट फैसिलिटी है। तो वहां वो टेस्ट करके वो पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि कैरियर होंगे कि नेगेटिव है।
आज सिकल सेल अवेयरनेस डे के दिन आप दोनों का हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज है?
मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि आप अगर ट्राइबल हैं या ट्राइबल एरियाज जहां पे ये प्रेवलेंट है बीमारी, वहां पे टेस्ट जरूर कराएं। और भारत सरकार की सारी सुविधाएं, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे एडवांस ट्रीटमेंट हो, वो पूरा का पूरा फ्रीली अवेलेबल है। आप इसमें बिल्कुल भी इसमें शर्म की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, आपको जरूर इसमें गाइडेंस मिलेंगी। और अगर आप सिकल सेल से ठीक हुए हैं तो लोगों को भी मोटिवेट करें, उनको भी बताएं कि ये बीमारी बिल्कुल रोकी जा सकती है।
आराधना मैडम, जैसा कि डॉक्टर नवलजीत जी ने बताया, आप क्या हमारे श्रोताओं को मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन?
ये एक सोशल टैबू नहीं है, पहले वो दिमाग से निकाल ले। कई लोग घबरा जाते हैं या संकोच करते हैं। अभी हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सभी PHC, CHC सब जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं वो जरूर अपना टेस्ट कराएं, समय पर टेस्ट कराएं। और अगर भी निकलता है तो इसको एक सोशल टैबू नहीं माने कि इससे हम छुपाएं, घबराएं, उसका इलाज है। और अवेयरनेस पर मैं मेनली फोकस करना चाहूंगी। फैसिलिटीज में तो हम सब चीज दे रहे हैं, लेकिन आज के दिन में भी हम देखते हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, जितने भी लोग इस अभियान में जुड़े हैं, जागरूकता का एक मास अभियान सरकार के साथ मिलकर चलाएं। हम लोग अभी 15 दिन का अभियान भी चला रहे हैं, तो ये पूरा अभियान में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो, ये मैं सबको कहना चाहूंगा।
समय के अभाव के कारण इस चर्चा को आज हमें यहीं रोकना पड़ेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर नवलजीत जी आपका और आराधना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता और सरकार के प्रयासों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।